प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको हमारा नमस्कार। कार्यक्रम सत्य वचन में आपका हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, जैसा कि आपको मालूम है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पवित्र शास्त्र बाइबल का क्रम अनुसार अध्ययन किया करते हैं, जो हमें आध्यात्मिक बातों को समझने और आगे बढ़ने में हमारी सहायता करता है। इन दिनों हम पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी गई इफिसियों के नाम पत्री का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओं, हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए, इससे पहले कि इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, प्रस्तुत है एक मधुर संगीत रचना।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले। ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए घुल घुल के मर जाए, मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूँ कि आप सब परमेश्वर की निकटता में रहते हुए कुशल पूर्वक हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और विशेष करके उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम बाइबल की पुस्तक में से इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि पौलुस ने हमें कलीसिया के निमित्त मसीह के तीन उपकार दर्शाए थे और अब वह पवित्र आत्मा के कार्य दर्शाता है। लेकिन इससे पहले कि हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है, ताकि हम आपके जीवित वचन का अध्ययन करें। इस समय जब हम आपके वचन से सीखते हैं, मनन चिंतन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए, हमें एकाग्रतापन दीजिए, ताकि प्रभु जब हम आपके वचन में से सीखें, निश्चित रूप से आपका वचन हम में से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित और परेशान है, उन पर अपने अनुग्रह प्रदान करें, उनके जीवन से बोले और बातचीत करें, ताकि आज के इस अध्ययन के द्वारा प्रत्येक जन आपके महान आशीषों को प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि पौलुस ने कलीसिया के निमित्त मसीह के तीन उपकार दर्शाए और अब वह पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाता है। पहला है, वह हमें नया जीवन देता है। दूसरा, वह हमारा शरण स्थान है। तीसरा, वह हमारे जीवन की वास्तविकता है। तो आइए हम देखें, पहला काम है नया जन्म। इफिसियों के पत्री 1 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। मेरे विचार में यह अंश धर्मशास्त्र का एक और अति महान अंश है। कोई कहेगा, यहां तो नए जन्म का उल्लेख है ही नहीं। वह कहता है, और बड़े ही आश्चर्यजनक रूप से, क्योंकि हम हमारे लिए किए गए परमेश्वर के कामों से चलकर हम में किए गए पवित्र आत्मा के कामों को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर का काम है कलीसिया की योजना बनाना, और प्रभु यीशु का काम है कलीसिया को मूल्य चुकाकर छुड़ाना, जो कर्मकारक कार्य है, परंतु पवित्र आत्मा का कार्य भिन्न है, कलीसिया की सुरक्षा। यह कर्ता कारक है, क्योंकि यह हमारे भीतर होता है। नव जीवन और नवीकरण के इस काम में पवित्र आत्मा विश्वासी के मन में ध्यान लगाना और विश्वास करना उत्पन्न करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह परमेश्वर की संतान बन जाता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 7 पद में प्रभु यीशु ने कहा, तुझे नया जन्म लेना अवश्य है। हम नया जन्म कैसे लें? यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमें बताया गया है, अर्थात यूहन्ना समझाता है 1 अध्याय उसके 12 पद में, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हमें बस उसके नाम पर विश्वास रखना है। पहला कुरिन्थियों के पत्र 1 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पौलुस कहता है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। परंतु जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान है। ये बुलाए गए कौन हैं? क्या ये वे हैं जिन्होंने शब्दों का उच्चारण सुना है? जी नहीं, ये वे हैं जिन्होंने सुना और समझा। परमेश्वर ने उन्हें बुलाया। यह वचनों को सुनने मात्र की बुलाहट नहीं है, यह बुलाहट वह थी जिसमें पवित्र आत्मा वचनों को सार्थक बनाता है। रोमियों के पत्र 10 अध्याय के 17 पद में पौलुस समझाता है कि विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। वे जो बुलाए गए हैं परमेश्वर का वचन सुनते हैं और प्रतिक्रिया दिखाते हैं। तब क्या होता है? पत्रस अपनी पहली पत्री में लिखता है 1 अध्याय के 23 पद में, नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर का वचन प्रसारित तो होता ही है, इस समय भी इस पृष्ठ द्वारा भी फैल रहा है। हम कहते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आपके लिए मर गया और यदि आप उसमें विश्वास करें तो उद्धार पाएंगे। अब कोई कहे, मैं वचन तो पढ़ता हूँ परंतु समझ में कुछ नहीं आता। अब एक और मनुष्य इस संदेश को सुने और पवित्र आत्मा इसे उसके मन में इसे स्थापित करे कि वह विश्वास करे, और जिस पर वह विश्वास ले आया उसका नया जन्म हो गया। सुनने का तर्क सम्मत कारण है विश्वास करना। जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, जी हाँ, यह नया जन्म पाने की मेरे ज्ञान में सर्वोत्तम व्याख्या है। आप सत्य के वचन को सुनते हैं, उद्धार का सुसमाचार, मुक्ति का शुभ संदेश और प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है, अर्थात तुमने सुनकर विश्वास किया तो साथ ही तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लग गई। सुनना, विश्वास करना और पवित्र आत्मा की छाप लगना एक ही साथ होता है। यह प्रसंगवश उस समय होता है जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है। आप मसीह में विश्वास लाते ही पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं और उसी पल पवित्र आत्मा की छाप आप पर लग जाती है। पवित्र आत्मा वचन सुनने के लिए आपका कान खोलता है और तुरंत विश्वास रोपित करता है, और उसका तार्किक चरण है विश्वासी पर मुहर लगाना। मेरे प्रियो, अब एक विवाद का प्रश्न है, पवित्र आत्मा की छाप पिता परमेश्वर लगाता है या प्रभु यीशु, या पवित्र आत्मा स्वयं लगाता है? ऐसे विवाद मेरे लिए व्याथा का कारण है। जैसे कोई पूछे, सुई की नोक पर कितने स्वर्गदूत नाच सकते हैं, इससे कोई लाभ नहीं, अतः इसका अभी तो आप त्याग कर दें। मैं तो इसका सीधा सा एक ही अर्थ समझता हूं कि पवित्र आत्मा स्वयं ही छाप है। पिता परमेश्वर ने क्रूस पर जान देने के लिए पुत्र को भेजा और पुत्र ने स्वेच्छा से यह काम किया, और पिता और पुत्र दोनों ने ही पवित्र आत्मा को एक निश्चित काम के लिए भेजा, परंतु वह कार्य आत्मा स्वयं ही करता है। वह पापी को नया जीवन देता है और साथ ही साथ उस पर मुहर लगाता है, और मैं तो यह मानता हूं कि वह स्वयं ही मुहर है। पवित्र आत्मा के इस मुहर लगाने के काम में दो गुना उद्देश्य है। वह हृदय पर परमेश्वर की छवि छाप कर विश्वासी को वास्तविकता प्रदान करता है। आप यह तो जानते ही हैं कि दस्तावेजों पर लगाई गई मुहर पर आकृति होती है, और मेरे विचार में पवित्र आत्मा ठीक ऐसा ही करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:33 में लिखा है, जिसने उसकी गवाही ग्रहण कर ली उसने इस बात पर छाप लगा दी है कि परमेश्वर सच्चा है। अतः कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ने विश्वासी पर अपनी छवि छाप दी है। मेरे मित्रों, छाप लगाने का दूसरा उद्देश्य है अधिकृत स्वामित्व का प्रदर्शन। 2 तीमोथियुस 2:19 में लिखा है, तो भी परमेश्वर की पक्की नींव बनी रहती है और उस पर यह छाप लगी है, प्रभु अपनों को पहचानता है और जो कोई प्रभु का नाम लेता है वह अधर्म से बचा रहे। अब यह सच्चाई की वह आपको सुरक्षित रखता है, आपको पाप में जीने की अनुमति नहीं देती। यदि आप प्रभु यीशु का नाम धारण करते हैं तो आप अधर्म से दूर रहेंगे। यदि यह प्रमाण प्रकट नहीं है तो आपका नया जन्म या आत्मा की छाप आप में नहीं है। यह छाप पवित्र आत्मा है और इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। हम पर यह छाप उद्धार के दिन तक के लिए स्थिर रहेगी। एक दिन आएगा जब पवित्र आत्मा हमें मसीह के हाथ में कर देगा। ऐसी छाप तो अति उत्तम है। इससे हम बीमाकृत पत्र के समान हो गए हैं। प्राचीन युग में पत्रों पर मुहर लगाई जाती थी, आज ऐसा नहीं है। आज केवल सरकारी छाप लगा दी जाती है, परंतु उद्देश्य एक ही है। डाकघर का यह उत्तरदायित्व तो होता है कि पत्र को सुरक्षित पहुंचाए। मेरे प्रियो, अब हम पवित्र आत्मा द्वारा कलीसिया की सुरक्षा के तीसरे और अंतिम काम को देखेंगे। इफिसियों के पत्र 1 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, वह उसके मोल लिए हो के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। बयाना वह पैसा है जो पहले दिया जाता है और संपदा के लिए वाचा स्वरूप है। इसका अर्थ है कि आपके लिए वह संपदा विशेष रोक कर रखी जाए। इसका अर्थ यह भी हुआ कि आप अभी और भी पैसा देंगे। दूसरे तरीके से कहा जाए कि आप एडवांस पैसा दे रहे हैं और आपको और भी पैसे उसे देने बाकी हैं। पवित्र आत्मा हमारा बयाना है, जिसका अर्थ है कि और भी अधिक आत्मिक आशीषें आने की व्यवस्था है, जिसकी यह शपथ और गारंटी है। हम देख चुके हैं कि हमें उत्तराधिकार दिया गया है और अभी और अधिक आएगा। पवित्र आत्मा बयाना है, अर्थात गारंटी है। यह सब उसकी महिमा की स्तुति के लिए है। यह इस अध्याय का 3रा स्तुति गान है। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि पौलुस त्रिएकत्व के प्रत्येक सदस्य के काम के बाद स्तुति गाता है। यह परमेश्वर की महिमा की स्तुति है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है और हमारा शरण स्थान और छाप बन जाता है, साथ ही हमें वास्तविकता प्रदान करता है। ये सब महिमामय सत्य अब पौलुस को प्रार्थना करने की इच्छा प्रदान करते हैं। इफिसुस की कलीसिया के ज्ञान और सामर्थ्य के लिए पौलुस की प्रार्थना को हम देखते हैं इफिसियों की पत्र 1 अध्याय उसके 15 और 16 पद में। इस कारण मैं उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। मेरे प्रियो, इफिसियों की कलीसिया अपने विश्वास और प्रेम के लिए जानी जाती थी। उनके लिए प्रेम कोई दिखावा या नारा नहीं था। वहां के पवित्र जन सच्चा प्रेम व्यक्त करते थे जो प्रभु यीशु पर आधारित था। यह कलीसिया मसीही गुणों में सबसे ऊंची थी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इफिसुस की कलीसिया आरंभिक कलीसिया का सबसे उत्तम उदाहरण थी। उनके विश्वास और प्रेम के कारण पौलुस उनके लिए परमेश्वर को धन्यवाद चढ़ाता है, और ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थना के लिए हमारी प्रेरक परिस्थितियां, समस्याएं, बीमारियां, तनाव और संकट काल ही होते हैं। मेरे पास हाल ही में किसी कलीसिया का प्रार्थना निवेदन आया। वह कलीसिया परेशानी में थी। वहां भाइयों के लिए प्रेम नहीं था। वहां व्यर्थ की बातें की बहुतायत थी और बाइबल अध्ययन की प्राथमिकता समाप्त हो गई थी। मैं उस कलीसिया से प्रेम रखता हूँ और उसके लिए प्रार्थना करता हूँ, परंतु दुख की बात तो यह है कि नकारात्मक बातें ही हमें प्रार्थना के लिए बाध्य करती हैं। पौलुस अच्छी बातों से प्रेरित होकर प्रार्थना करता था। जब आप परमेश्वर के संतान में कोई अच्छी बात देखते हैं, तब आप स्वतः ही प्रेरित होते हैं कि परमेश्वर से कहे, हे प्रभु, मैं इस भाई के लिए और जिस प्रकार तू उसे काम में ले रहा है, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। आप किसी बाइबल आधारित एक अद्भुत कलीसिया के बारे में सुनते हैं, जहाँ परमेश्वर प्रचारक को आशीषें दे रहा है और परमेश्वर का वचन फैल रहा है, तो क्या आप घुटनों पर आकर परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? मेरे मित्रों, क्या यह सच नहीं कि हम प्रायः परमेश्वर को अपनी आवश्यकताओं की सूची थमा देते हैं, मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए आदि आदि। परमेश्वर आपका संदेशवाहक नहीं है। हम उसे धन्यवाद क्यों नहीं देते हैं? जब कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आप उससे धन्यवाद देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर आपको आशीषें देता है तो आप उसे धन्यवाद क्यों नहीं देते? हमें अधिकाधिक धन्यवाद की आवश्यकता है। प्रार्थना करनी चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। मेरे विचार में यदि हम कम से कम वर्ष में एक बार धन्यवाद की प्रार्थना करें तो वह प्रसन्न होगा। मेरे एक प्रचारक मित्र ने बताया कि उनकी प्रार्थना सभा बड़ी घिसी पिटी, नीरस और छोटी हो गई थी कि उन्हें किसी नए अभ्यास की आवश्यकता पड़ी। उन्होंने यह निर्णय लिया कि वे प्रार्थना सभाओं में केवल परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे। अतः उसने घोषणा की, निश्चय ही हमारी प्रार्थनाएं संक्षेप में थी। परंतु उस रात हमारी प्रार्थना सभा बहुत अच्छी थी। किसी ने परमेश्वर से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने केवल उसके उपकारों के लिए उसे धन्यवाद दिया। मेरे प्रियो, पौलुस कहता है कि जब उसने एफेसुस की कलीसिया के बारे में अच्छी बातें सुनी तो उसने कहा, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। यह एक अति रोचक बात है कि हम पौलुस को एक असामान्य प्रार्थनाशील व्यक्ति रूप में नहीं देखते हैं। हम उसे केवल एक महान मसीही क्रूस का प्रचारक मानते हुए उसे सबसे ऊपर रखते हैं। हम पौलुस और अन्य कोई प्रचारक को नहीं देखते हैं। वह एक अति उत्तम शिक्षक भी था। निसंदेह प्रभु यीशु सबसे महान शिक्षक था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7:46 में श्रोताओं ने अंगीकार किया है कि उसके तुल्य शिक्षा देने वाला मनुष्यों में नहीं था। पौलुस उसी के चरण चिन्हों पर था, या यूं कहें कि उसी की प्रथा में शिक्षा देता था। वह एक अच्छे पासवान का उदाहरण भी था। डॉक्टर लुका के वृतांत के अनुसार पौलुस इफिसुस के विश्वासियों के साथ रोया भी था जब उसने उनसे विदा ली थी। वे पौलुस से प्रेम करते थे और पौलुस भी उनसे अत्यधिक प्रेम रखता था। मैं किसी कलीसिया के आत्मिक जीवन को उनके मन में उनके पासवान के लिए जो प्रेम है उससे आंकता हूँ। परंतु जब उनका पास्टर या पासवान परमेश्वर के वचन के लिए खड़ा हो, विश्वासियों का स्वभाव उनके पास्टर के लिए उनके मन में उपस्थित प्रेम से जाना जाता है। आज विश्वासियों की परख परमेश्वर के वचन के प्रति उनकी श्रद्धा से होती है। इफिसियों की कलीसिया पौलुस से तो प्रेम रखती ही थी, वे परमेश्वर के वचन से भी प्रेम रखते थे। आरंभिक कलीसिया में सेवा के संबंध में आप किसी को ऊंचाइयों पर देखते हैं तो वह पौलुस ही होगा। परंतु जब एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य का विषय आए तो क्या आप पौलुस को सूची में जोड़ेंगे? हम पर्वत पर मूसा को एक महान मध्यस्थ मानते हैं। दाऊद को उसके भजनों और पाप के पश्चाताप की प्रार्थना के कारण प्रार्थनाशील मानते हैं। एलिया को मानते हैं क्योंकि उसने पानी से गीली वेदी पर आग गिराने की प्रार्थना की थी। दानियल ने परदेश में विरोधियों के मध्य जान की परवाह किए बिना यरूशलेम की ओर निगाह उठाकर दिन में 3 बार प्रार्थना की। यीशु भी प्रार्थना पर आधारित था। उसके शिष्यों ने उससे कहा कि वह उन्हें प्रार्थना करना सिखाए। इसे हम लुका रचित सुसमाचार 11:1 में पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पौलुस भी एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य था? मैं जब बाइबल स्कूल में पौलुस के पत्रों का अध्ययन करवा रहा था तब मैंने अपने विद्यार्थियों से पौलुस की प्रार्थनाओं की सूची बनाने का आग्रह किया। विद्यार्थी विस्मित हो मुझसे कहने लगे, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि पौलुस की ऐसी प्रार्थना सूची होगी। मुझे कभी ध्यान नहीं आया कि उसने इतने लोगों के लिए प्रार्थना की। पौलुस एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य था। मेरे प्रियो, इस पत्री में पौलुस की 2 प्रार्थनाएं हैं। हम उसकी पहली प्रार्थना को देख रहे हैं। इसराइल के वंशजों को मसीह की देह कहते हुए वह घुटनों पर गिरकर प्रार्थना करता है। उसकी दूसरी प्रार्थना 3:3 में है। उसकी ये 2 प्रार्थनाएं परमेश्वर की संतान होने के कारण अन्य विश्वासियों के प्रति उसकी चिंता को व्यक्त करती है। किसी को परखना हो कि वह परमेश्वर की संतान है या नहीं तो उसका प्रार्थनाशील जीवन देखें। वह परमेश्वर पर कितना निर्भर करता है। वह अपनी आवश्यकताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना करेगा। वह अन्यों के लिए भी मध्यस्थता की प्रार्थना करेगा। मुझे पूरे भारत देश से विश्वासी लिखते हैं या जब भेंट होती है तो कहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे लिए यह उनके विश्वास का प्रमाण है। आपको स्मरण होगा कि दमिश्क में हनन्याह को जब स्वर्गदूत ने पौलुस के पास जाने का आदेश दिया तब वह कुछ परेशान हुआ था, परंतु स्वर्गदूत ने कहा कि वह प्रार्थना कर रहा है। प्रेरितों के काम 9:11 में हम पाते हैं, यह हनन्याह के लिए संकेत था कि तर्शीश के शाऊल के साथ कुछ अनहोनी घटना हुई है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। मेरे मित्रों, पौलुस सबसे पहले एफिसुस की कलीसिया के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता है। वे वरन सब कलीसियाएं पौलुस की प्रार्थना सूची पर थी। अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूं, इसका अर्थ है कि वह एक एक का नाम लेकर प्रार्थना करता था। मैं एक महान प्रचारक के साथ था, लोग उससे हाथ मिलाने आ रहे थे। एक व्यक्ति ने उससे कहा, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। मैं कभी नहीं भूलता कि उस प्रचारक ने पूछा, बहुत बहुत धन्यवाद, परंतु क्या आप नाम लेकर मेरे लिए प्रार्थना करते हैं? मैं नहीं चाहता कि परमेश्वर मुझे कोई और समझ बैठे। यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो उनका नाम अवश्य लें। मेरे प्रियो, हमने देखा है कि पौलुस की प्रार्थना का उद्देश्य अच्छा समाचार था। अब हम देखेंगे कि वह भौतिक की अपेक्षा आत्मिक बातों के लिए प्रार्थना करता है। ये आशीषें अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए मुझे और आपको भी किसी के लिए जब प्रार्थना करना है तो निश्चय ही उसका नाम लेकर के प्रार्थना करें। मेरे मित्रों, आज के इस अध्ययन में हम देख रहे हैं कि पौलुस भी एक महान प्रार्थनाशील मनुष्य था। क्या आज आप अपने लोगों के लिए, परमेश्वर के दासों के लिए, कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं? आइए आज हम इस वचन के प्रकाशन में एक निर्णय लें और इस बात को निश्चय कर लें कि हम अवश्य ही प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अवश्य ही अपने आत्मिक जीवन में आशीष प्राप्त किया है। प्रभु आप सबकी सहायता करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित बना ले, यीशु को तू अपने जीवन में अपना मित बना ले। छोड़ दे ये दुनिया है सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले, होगा तेरा भला, होगा तेरा भला। ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जाग जरा मत वाले, जाग जरा मत वाले, जाग जरा।